सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं केवलनाणुजोय्य छद्दवमणिज्यं पवाईः नमिऊणजिनं भणिमो दौवनियोगं गणियसारं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी, जिसके कर्ता है भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य, और जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह तीसरी पुस्तक में हम देख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 13 पर आए हैं। अपना अनंत का विषय चल रहा है। पहले ही सूत्र में पूछा गया कि द्रव्य प्रमाणानुगम से मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या कितनी है, तो कहते अनंत है। तो वहां पर उन्होंने 11 प्रकार के अनंत बताए हैं। तो उसमें से हम देख रहे थे, पहला है जैसे निक्षेप, हम देखते थे ना 6 प्रकार के निक्षेप, कैसे नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप और भाव निक्षेप। तो ये जो निक्षेप है वो हर वस्तु में, हर जो कोई चीज़ हम जानना चाहते हैं उसमें ये निक्षेप हम डाल सकते हैं। तो ये निक्षेप हम उसमें रखते हैं, यानी पदार्थ का सही रूप से अच्छी तरह से हमें ज्ञान हो जाए, इसलिए पदार्थों में जो भेद करके समझाते हैं, भेद करना कहो या उसको विशेष पद्धति से समझते हैं, उसको निक्षेप कहते हैं। हम गेयों में ये निक्षेप रखे जाते हैं, जैसे हमने नाम रखा, इसको पहचानने के लिए अभी हमारे घर में 25 वस्तुएं हैं, तो वह लाव कहने से क्या समझेंगे हम, तो हर चीज़ का कोई ना कोई नाम रखेंगे हम। बच्चे भी हमारे घर में हैं, तो सभी बच्चे हैं, समझो हमारी अभी ज्वाइंट फैमिली और 10-12 बच्चे हैं, तो किसको कैसे समझना, किसको हमको यही व्यक्ति के बारे में बोल रहे, तो उसको हम नाम रख देते हैं। तो नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो उसको नाम निक्षेप कहते हैं। स्थापना निक्षेप यानी किसी अन्य चीज़ में अन्य चीज़ की स्थापना करना, यह है ऐसा मान लेना, जैसे मूर्ति में ये भगवान महावीर है ऐसा हम स्थापना करते हैं, और उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी होता है अपना, उनकी पूजा होती है जैसे हम नमस्कार करते हैं, ये स्थापना निक्षेप हुआ। द्रव्य निक्षेप में क्या लेना है कि द्रव्य निक्षेप ने वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूतकाल के और भविष्यकाल के पर्याय है, उसमें यह है अभी वर्तमान में ऐसा जो हम कह देते हैं उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। और भाव द्रव्य क्षेत्र निक्षेप और काल निक्षेप तो आसान है, भाव निक्षेप में तो वर्तमान पर्याय वाला जीव लेना भाव निक्षेप में, द्रव्य निक्षेप में वर्तमान को छोड़कर भूत भविष्य की पर्याय वाला जीव लेना, और भाव निक्षेप में वर्तमान वाला देना। अभी द्रव्य निक्षेप में क्या है कि दो भेद किए हैं, एक आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। तो आगम द्रव्य निक्षेप यानी जिस संबंधी हम जान रहे हैं, अभी यहाँ अनंत का विषय चल रहा है, तो अनंत संबंधी जो आगम में आया है, उस आगम का जो ज्ञाता है, ऐसा जो जीव है, वो जीव वर्तमान में उस उपयोग से रहित होता है, ऐसा जीव वर्तमान में उपयोग उसका अन्यत्र लगा है, ऐसे जीव को हम वो आगम द्रव्य निक्षेप से कहेंगे कि आगम द्रव्य अनंत है। द्रव्यानंत की बात है ना, आगम द्रव्यानंत, आगम द्रव्यानंत है ने अनंत संबंधी आगम का ज्ञाता, परंतु वर्तमान में उस उपयोग से रहित, ये एडिशनली उसमें लगाना चाहिए, तभी वो द्रव्यानंत बनेगा आगम द्रव्यानंत, नहीं तो वो आगम भावानंत बन जाएगा। वर्तमान में उसका उपयोग उसमें रहेगा तो आगम भावानंत कहेंगे हम उसको, आगम का ज्ञाता वर्तमान में उपयोग रहित ऐसा जो जीव है उसको आगम द्रव्यानंत कहते हैं। देखो अभी अनंत के बारे में उसने ज्ञान कर लिया है, बराबर, परंतु अभी वर्तमान में वो क्या है, समझो पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर, तो उसका उपयोग कहाँ है, वो अनंत के बारे में उसके उपयोग नहीं चल रहा है, उसका पेपर अभी न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ आई उस पर चल रहा है, तो वर्तमान में उस अनंत के संबंध में उसका उपयोग नहीं है। वर्तमान उपयोग रहित है, उपयोग रहित कभी जीव नहीं होता है, उस विशिष्ट विषय में उसका उपयोग नहीं है, उसका उपयोग अन्यत्र है। अनंत वाला जो शास्त्र है उसमें उसका उपयोग अभी नहीं है। जो ऐसा ज्ञाता जीव है उस जीव को ही आगम द्रव्यानंत कहते हैं। क्या क्षावशमी ज्ञानी जीव? हाँ, क्योंकि क्षावशमी ज्ञानी जो है वो वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। केवल ज्ञानी की यहाँ बात ही नहीं है, ख्याल है ना? केवल ज्ञानी कभी उपयोग रहित हो गया किसी चीज के बारे में? ख्याल है, शाही ज्ञान तो त्रिकाल सभी को जानता ही रहता है। शाही ज्ञान कहो या केवल ज्ञान कहो की बात है। देखो देखो, आप आपका प्रश्न है चौथे गुणस्थान वाला क्षायिक जीव, परंतु वो क्षायिक किस अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से कि सम्यक्त्व की अपेक्षा से? हाँ, यानी उसने किसका क्षय कर दिया है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का, यानी दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का क्षय किया, इसलिए उसको क्षायिक कहा है। उसका ज्ञान तो क्षोभक्षम ज्ञान है, बारहवें गुणस्थान तक के जीवों का क्षोभक्षम ज्ञान ही है, ख्याल है ना? हाँ, देखो हम पिनांग भाई, हम यहाँ रिपीट सब रिवीजन कर रहे हैं। निक्षेप यानी जो गेय वस्तु में अभी हम अनंत के संबंध में जान रहे हैं, तो अनंत के बारे में हम निक्षेप रखेंगे, यानी अनंत ऐसा नाम रख दिया, वो हमारा क्या हुआ, नाम अनंत। निक्षेप के छह भेद है, नाम निक्षेप, फिर स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप और भाव निक्षेप। इसमें मुख्य तो चार ही है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। क्षेत्र और काल तो आसान है समझने में, ख्याल है ना? तो इसको ही हमको खास तरीके समझना है। तो किसी का नाम, किसी व्यक्ति का, किसी कोई चीज का हमने अनंत ऐसा नाम रख दिया तो वो नाम अनंत हो गया। स्थापना अनंत भी हम समझ सकते हैं, किसी चित्र में, किसी वस्तु में, किसी फिगर में, किसी सिंबल में हमने अनंत ऐसा मान लिया, स्थापन कर दिया, तो वो हमारा स्थापना अनंत हो जाएगा, ख्याल है ना? ये दोनों ही चीजें एकदम आसान है। अब तीसरी जो है द्रव्यानंत और भावानंत की हम बात करेंगे। तो द्रव्य अनंत, उसमें दो भेद किए। जब ये द्रव्य निक्षेप की बात होती है तो भूतकाल की पर्याय और भविष्यकाल की पर्याय को और वर्तमान से रहित वाले को वो द्रव्य निक्षेप में लेना। जैसे हम हमेशा वो श्रेणिक राजा का उदाहरण लेते हैं, वर्तमान में नारकी है, फिर भी हम भूतकाल के पर्याय से उनको कहते हैं ये श्रेणिक राजा है, और ऐसा भी कहते हैं हमारे भावी तीर्थंकर है, या जो युवराज है, छोटा बच्चा है राजा का, उसको अभी राजा कहना, अभी तो वो भविष्य में होगा राजा, फिर उन तो अभी उसको राजा कहना, अभी किसी ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली उसको तभी से डॉक्टर कह देना, ये क्या है? ये सब द्रव्य निक्षेप है, क्योंकि उसके भविष्य काल के पर्याय की पर्याय को अभी हम अभी से कह रहे हैं उसको। तो ये जो द्रव्य निक्षेप है उसमें दो भेद होते हैं, आगम और नो आगम। आगम यानी ये जो आगम शास्त्र है, द्वादशांग की रचना जो जिसमें हुई, यानी प्रवचन जो कहो, आगम कहो, ग्रंथ कहो, शास्त्र कहो, तो उसके जानने वाला जो जीव है, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग जो अन्यत्र है, ऐसे जीव को आगम द्रव्य निक्षेप से आगम द्रव्य अनंत कहेंगे हम। यहाँ अभी हम अनंत की बात चल रही है तो आगे अनंत लगाना। पहले जब हमने मंगल की बात की थी तो आगम द्रव्य मंगल कहा था, तो तब कहा था कि मंगल संबंधी शास्त्र का ज्ञाता। अब अनंत की बात चल रही है तो हम कहेंगे अनंत संबंधी जो शास्त्र में विवेचन है अपने जिनागम में, उसका जो ज्ञाता है ऐसा जीव द्रव्य आगम लेना, आगम द्रव्य अनंत। परंतु उसमें एक कंडीशन है, जब जब द्रव्य निक्षेप लगता है तो वो वर्तमान उसमें उसका उपयोग नहीं है ऐसा जीव लेना। आगम का ज्ञाता है परंतु वर्तमान में उसका उपयोग अन्यत्र है, अनंत वाले शास्त्र में उसका उपयोग नहीं है, उसका उपयोग कोई अन्य बात में व्यापार धंधा कर रहा हो या कोई अन्य बातें कर रहा हो तो उसका उपयोग वहाँ नहीं है, ऐसे जीव को क्या कहेंगे हम? आगम द्रव्यानंत। ये जो छह निक्षेप है या जो अधिक भी निक्षेप है ना, वो बार बार हर चीज़ पे लगाएंगे हम भविष्य में, तो ये बार बार दोहराने से हमें तो उसके याद हो जाएंगे। पहली बार दूसरी बार सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे कुछ ख्याल में नहीं आया, चिंता की बात नहीं है। द्रव्य निक्षेप में वर्तमान उसमें उस पर्याय रूप से नहीं है, इतना ख्याल में लेना। और जब भाव निक्षेप कहेंगे आगे जाके तो वर्तमान उस पर्याय रूप से है, ऐसा ले लेना। तो द्रव्य में हमने दो बातें देखी, द्रव्यानंत में दो, एक आगम द्रव्यानंत और एक नो आगम द्रव्यानंत। आगम यानी जो शास्त्र का ज्ञान, तो शास्त्र अनंत संबंधी शास्त्र का ज्ञान, कोई भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है अभी, हम अनंत पर द्रव्यानंत घटा रहे हैं और द्रव्यानंत में भी आगम द्रव्यानंत घटा रहे। तो आगम द्रव्यानंत किसको कहना? जीव को कहना। कौन से जीव को कहना? जो अनंत संबंधी शास्त्र का ज्ञाता है, ऐसा जीव लेना। तो क्या वो भी वर्तमान में अनंत संबंधी शास्त्र पढ़ रहा है? वो नहीं, उसका अभी वर्तमान में उपयोग अन्यत्र है, फिर भी वो शास्त्र का जानकार है, उसने वो पढ़ा है, तो उसको हम आगम द्रव्यानंत कहेंगे। ये आगम की बात ख्याल आई तो अभी हम नो आगम की देखेंगे। नो आगम यानी क्या? अन्य जो, जो आगम के सिवाय अन्य जो कुछ है उसको नो आगम में लेते हैं। जैसे शास्त्र का जो ज्ञाता जीव है उसका शरीर, ज्ञायक का शरीर, वो तो जान नहीं रहा, फिर भी वहां उसको नो आगम द्रव्यानंत कह देना। शरीर को जो आगम संबंधी ज्ञाता है, अनंत संबंधी ज्ञान है जिसको, शास्त्र का अभ्यास किया है, ऐसे जीव के शरीर को ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत कहेंगे। ज्ञायक का शरीर, ज्ञायक शरीर ने शरीर ज्ञायक नहीं है, ये समास तैयार हो ना, ज्ञायक का शरीर, वो ज्ञायक शरीर। तो कौन सा शरीर? अभी का कि पहले का कि भविष्य काल का? तो कहते उसमें तीन भेद कर डाले। ज्ञायक शरीर अभी हम ज्ञाता है, अभी हम धौला पड़ रहे, और हमारे पूर्व भव के शरीर को भी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य धौला कहेंगे अभी हम। ख्याल है ना, एक किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन है। ये शब्द बहुत बड़े हो जाते हैं ना, यानी उसका नाम बड़ा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्ञायक का शरीर वो भूतकाल का हो सकता है, वर्तमान का भी शरीर और भविष्यकालीन भी शरीर। उसको क्या कहा हमने? ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत। ये ज्ञायक का शरीर भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही काल का शरीर लेना उसमें। ये बात यहां तक बैठ गई। अब दूसरा, ये जो हमने द्रव्यानंत के मूल में दो भेद देखे, देखो पिनांग भाई, द्रव्यानंत के दो भेद, आगम द्रव्यानंत, नो आगम द्रव्यानंत। आगम द्रव्यानंत यानी अनंत के शास्त्र संबंधी ज्ञाता जीव, परंतु वर्तमान में उपयोग से रहित है, वो आगम द्रव्यानंत जीव को कहेंगे, उस जीव को आगम द्रव्यानंत कहेंगे। नो आगम द्रव्यानंत में किसको लेना? अन्य चीजों को लेना। तो उसमें किस किस को लेना नो आगम में? तो नो आगम में भी हमने तीन भेद किए थे। पहला है ज्ञायक शरीर, ये नो आगम द्रव्यानंत ऐसे उसके पूरा, जैसे हम अपना नाम कहते हैं तो पिताजी का नाम और सरनेम सब बता देते ना, तो वैसे इसके आगे ये पहले वाला सब लगा देना। तो इसमें ज्ञायक शरीर एक है, भावी कहो या भव्य कहो, और एक तद व्यतिरिक्त, तद यानी उससे, व्यतिरिक्त नहीं, उसके अलावा, इसके अलावा और जो कुछ है वो, उसके अलावा क्या है वो देखेंगे अभी हम। एक तो ज्ञायक शरीर यानी जानने वाले जीव के शरीर, वो शरीर भूतकाल के पूर्व भव का होगा, वर्तमान भव का होगा या भविष्य का होगा। इस शरीर को क्या कहा हमने? ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्यानंत। पूरा ही बोल देना। अभी उसमें फिर भूत ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत कहेंगे। क्या ना, इसमें तीन भेद करेंगे ज्ञायक में, भूत ज्ञायक शरीर, फिर वर्तमान ज्ञायक शरीर और भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत। पूरा ही पूरा नाम लेना है। तो ये जो दूसरा जो है यहाँ भावी वाला एक भेद है, ये ज्ञा एक शरीर की बात नहीं, भावी यानी जीव ही भविष्य में, जो अभी जो ज्ञाता नहीं है, अभी जो अनंत का ज्ञान जिसको है ही नहीं, जिसने अभ्यास किया ही नहीं है, परंतु हाँ ये जीव की बात है, यहाँ शरीर की बात थी, यहाँ ज्ञायक शरीर में शरीर की बात थी, जानने वाले जीव के शरीर की बात थी, अब यहाँ नहीं जानने वाले जीव की बात है, परंतु वो नहीं जान रहा है तो क्या है, भविष्य में वो जानने वाला है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो है वो कि ये भविष्य में जानने वाला है ना, या कोई मुनि कहेंगे ये तो भविष्य में इसका ज्ञाता होगा इतने अनंत के, या अभी हम अभी अनंत पढ़ने जा रहे हैं तो हम भविष्य में इसके अनंत के ज्ञाता हो गए, तो अभी हमको यानी इन जीवों को क्या कहेंगे, भावी नो आगम द्रव्य अनंत। यहाँ शरीर को लिया है, शरीर में भूत भविष्य वर्तमान तीनों के तीनों ही शरीर लिए, परंतु वो ज्ञाता वर्तमान में है, तो ये भावी ज्ञायक में और इस भावी में क्या डिफरेंस है, अभी प्रश्न आने वाला है इस। हाँ, ये जो यहाँ वाला जो भावी है ना, भावी ज्ञायक में शरीर है, भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत में शरीर की बात है, भविष्यकालीन शरीर की, वर्तमान में जो जान रहा है ऐसे जीव के भविष्य के शरीर की बात है, और भावी नो आगम द्रव्यानंत में उस जीव की बात है जो भविष्य में जानने वाला है, अभी जान नहीं रहा है। ये दो इसका डिफरेंस ख्याल में, वो नाम नहीं याद रखे कोई बात नहीं, अभी जब हम समझ रहे हैं समझा रहे हैं तो ये ख्याल में आता है कि नहीं, ये बात महत्व की, वो तो तद व्यतिरिक्त में आ जाएगी, यहाँ तो शरीर की बात है, यहाँ जीव की बात है, तद व्यतिरिक्त में अभी अन्य सब चीजें जो कुछ है वो ले लेंगे, वो अन्य कौन है वो बताएंगे, उसमें कर्म भी होगा और नो कर्म भी होगा, यानी आठ कर्मों की जो बात है वो तद व्यतिरिक्त में आ जाएगी, उस जीव के कर्मों की बात, और अन्य जो कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ पड़ी हमारे आजू बाजू में, वो अनंत ऐसी चीजें हैं, उन सबको तद व्यतिरिक्त में हम इंक्लूड कर देंगे। अब अभी हम पढ़ेंगे, मूल इतने बात ख्याल में आए तो आगे जो हम चर्चा समाधान करने जा रहे हैं वो आपके बराबर ख्याल में आ जाएगी। ये सभी भेद किसके चल रहे अभी, द्रव्यानंत के, मूल द्रव्यानंत है, उसके दो भेद, आगम द्रव्यानंत नो आगम द्रव्यानंत। आगम द्रव्यानंत है यानी अनंत संबंधी शास्त्र का ज्ञाता है, आगम का ज्ञाता है, परंतु वर्तमान में उपयोग से रहित है, उसको आगम द्रव्यानंत कहा। नो आगम द्रव्यानंत में किसको कहना, कि अभी ऐसे उसमें तीन भेद है नो आगम द्रव्यानंत के, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर में वो ज्ञाता तो है जीव, ज्ञाता जीव के शरीर लेना, शरीर तो कुछ जानता नहीं है, फिर वहां वो जीव का आधारभूत है इसलिए उसको शरीर को भी लिया, तो ऐसे ज्ञाता जीव के शरीर कौन सा, भूतकाल वाला, वर्तमान वाला और भविष्य वाला, तीनों काल के शरीर, तो इसके ज्ञायक के भी हम तीन भेद करेंगे, ज्ञायक शरीर के तीन भेद। ज्ञायक का शरीर है वो, शरीर ज्ञायक नहीं है, है ना, वो समास हो गए, तो यहाँ ये ज्ञायक के भी तीन भेद हमने देखे, भूत भविष्य और वर्तमान वाले। ये नो आगम का डायरेक्ट एक भेद है भावी, उसमें वो जीव अभी ज्ञाता नहीं है, परंतु वही जीव भविष्य में ज्ञाता होने वाला है, उस जीव को अभी हम क्या कहेंगे, भावी, भावी नो आगम द्रव्यानंत, है ना, ये उसके ऊपर के नाम उसके साथ चिपका देना सब। और ये तद व्यतिरिक्त वाला है, वो तद व्यतिरिक्त में जो कुछ हमने अन्य बातें जो देखेंगे, अभी हम पढ़ा नहीं हमने इसमें, कर्म नो कर्म आदि जो बातें हैं, तो उसको हम ऐसे ही कहेंगे, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यानंत। ये द्रव्य के इतने सारे जो भेद प्रभेद है ना, वो हमने पहले देखे थे, बार बार यही देखेंगे, अभी तो अनंत का विषय आया, जो कुछ विषय आएगा उसमें हमेशा ये निक्षेप तो डालेंगे ही, और जब बार बार निक्षेप आएंगे तो बार बार हम सुनेंगे तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें। देखो हम तो 13 पृष्ठ पर आए हैं, परंतु 12 पृष्ठ पर खाली वो द्रव्यानंद की हम परिभाषा देखते हैं, वो श्लोक के अर्थ हमने कल देखे थे उसको नहीं देखेंगे, 12 पृष्ठ पर ऊपर से 5 लाइन के बाद जो द्रव्यानंत लिखा है ना, वहां अनंत के 11 भेद देखे थे हमने, इसमें से ये तीसरा भेद है। पहला भेद हमने नाम अनंत देखा, दूसरा स्थापना अनंत देखा, और ये तीसरा द्रव्यानंत देख रहे हैं। तो द्रव्यानंत आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है, अभी हमने देखे थे ना। अभी वो कौन कौन से एकार्थवाची है उसके श्लोक वगैरह उसकी बात यहाँ नहीं देखेंगे। अब 13 पृष्ठ पर आना, आगम द्रव्यानंत की परिभाषा यहाँ लिखी है। क्या लिखते देखो, पहली लाइन में, अनंत विषय शास्त्र को जानने वाले परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्यानंत कहते हैं। ये आसान है ना, अभी कल तो जरा भारी लग रहा था, क्यों पिनांग भाई, ये ख्याल आया ना अभी? अभी आगे शंका, जिनको पहले आगम का ज्ञान था किंतु पश्चात विस्मृत हो गया है, और जो आगम को भविष्य काल में जानेंगे उन्हें भी द्रव्यागम यह संज्ञा क्यों न दी जाए। द्रव्यागम यानी आगम के ज्ञाता, परंतु वर्तमान में तो बिल्कुल भूल ही गए हैं, उपयोग से रहित की बात नहीं कर रहे। ज्ञाता और उपयोग से रहित, उसको हम आगम द्रव्यानंत कह रहे हैं, आचार्यों ने कहा उसको आगम द्रव्यानंत। परंतु शंकाकार ऐसा जीव लेना चाहता है कि जो वर्तमान में उस ज्ञान से रहित है, या तो वो भूतकाल में उसने पढ़ा था या भविष्य काल में पढ़ेगा, क्या ऐसे जीव को भी हम आगम द्रव्यानंत में लेना है? तो आचार्य कहते नहीं लेना। ख्याल आता है? इसका समाधान करते हैं, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम है लक्षण जिसका, ऐसा शक्ति रूप उपयोग वर्तमान में उन जीवों के नहीं पाया जाता है। हमने जो आगम द्रव्यानंत में ऐसा जीव दिया था कि जो शास्त्र का ज्ञाता तो है परंतु वर्तमान में उपयोग से रहित कहा था, वर्तमान में ज्ञान के क्षोभम से रहित नहीं कहा था। क्षोभम ज्ञान है वो लब्धि उपयोग रूप है, जो हमने कल देखा था। अभी हमें अन्य विषयों का भी ज्ञान है, वर्तमान में विद्यमान है, अभी अपना शास्त्र में उपयोग लग रहा है, फिर भी हमारा जो कुछ अपना अपना विषय है, मेरा मेडिकल संबंधी होगा या आपका व्यापार संबंधी होगा, आपका और कोई अन्य चीजों आर्ट संबंधी होगा, तो ये सब आपका ज्ञान और उसका क्षोभम वर्तमान में है, परंतु जो भूल गया है, जो वर्तमान में उसमें ज्ञान ही नहीं है, और जो भविष्य काल में जानेगा उसके वर्तमान में उतना ज्ञानावरण का क्षोभम नहीं है, क्योंकि उपयोग नहीं है। तो उसका एनी मोमेंट वो उपयोग में लाता है तो वो अनंत का ज्ञान उसको है। जैसे हम 2 + 2 = 4, ये तो जब चाहे उपयोग रूप हो सकता है, यानी वो तो उतना क्षोभम हमारा पड़ा है, ख्याल है ना, 1 और 1 2 होते हैं, इतना तो क्षोभम है ही ना, क्यों? ऐसे परंतु जिसको उतना भी क्षोभम नहीं है, परंतु जो भविष्य काल में वो जानने वाला है, उसको वहां ये आगम द्रव्यानंत में नहीं लेंगे। ख्याल आता है? क्यों नहीं लेते, उसका कारण भी उन्होंने बताया कि वैसा उनको उस विशिष्ट जाति के ज्ञानावरण कर्मों का क्षोभम वहां नहीं पाया जाता। जब विशिष्ट ज्ञानावरण का वहां क्षोभम है तो वहां वो शक्ति रूप उपयोग भी वहां होता है, इसलिए उन्हें द्रव्यागम यह संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती है। वो हमने उसको नो आगम द्रव्यानंत में लिया है, भावी में याद होगा ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, वर्तमान में जो ज्ञाता नहीं है परंतु जो भविष्य काल में ज्ञाता होगा, तो उसको हमने भावी में देखा था, भावी उसको नो आगम कहेंगे, आगम नहीं कहेंगे, आगम के ज्ञाता को ही आगम द्रव्यानंत कहेंगे। आगम का ज्ञाता जो अभी वर्तमान में नहीं है उसको आगम नहीं कहेंगे, नो आगम द्रव्यानंद कहेंगे। ख्याल आता है इसकी बात? हाँ, नीचे लिखा है देखो, दूसरा पैराग्राफ समाधान में, आगम से अन्य को नो आगम कहते हैं, जो आगम नहीं है, आगम नहीं है ने जो आगम का ज्ञाता नहीं है, उससे जो अन्य है, जो आगम नहीं वो नो आगम कहाया। वह नो आगम द्रव्यानंत 3 प्रकार का है, अभी अभी हमने देखे थे ना 3 प्रकार, उसी को यहाँ दोबारा बताएंगे। ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत, यानी जो ज्ञाता है ना उसका शरीर की, उसके शरीर की बात है, वो ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत भव्य नो आगम द्रव्यानंत। यहाँ भव्य लिखा है, भावी भी लिखते हैं, भव्य कहो या भावी कहो एक ही बात है। भव्य यानी होने योग्य, भविष्य काल में होने वाला है वो, इसलिए वहाँ भव्य लिखा है। पहले हमने उसको भावी ऐसा भी नाम देखा था, दोनों एक ही है, भव्य कहो या भावी कहो, नो आगम द्रव्यानंत। और तद व्यतिरिक्त इनसे कोई, इनके अलावा अन्य को जो कोई है वो, जो शरीर की भी बात नहीं है, जीव की भी बात नहीं है, तो शरीर और जीव से अन्य और कुछ जो चीज़ें हैं उसको तद व्यतिरिक्त में ले लेंगे, तो उसका नाम है तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यानंत। अभी जो हमने पहला भाग देखा था ज्ञायक शरीर की बात की थी, उसको देखते हैं। उनमें से अनंत विषयक, वो यह लगाया था ना कल हमने वहाँ, अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाले के, ये जानने वाला जीव लिया, ऐसे जानने वाले जीव के तीनों कालों में होने वाले शरीर को, देवेंद्र भाई क्या लिखा है? हाँ, आपका कल भी मिस्टेक हुआ था, इसीलिए आपका नाम लेकर मैं बता रही हूँ। जो क्या लिखा, अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाला जीव, ऐसे जीव को पूर्व भव के शरीर, वर्तमान का शरीर और भविष्यकालीन आगे के भवों के शरीर, उनको क्या कहेंगे? ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत। क्या लाया? अभी ज्ञाता जीव की यानी एक ही जीव की बात हो रही है, आप कन्फ्यूजन क्यों करते हैं? बहुत जीवों की बात नहीं, जिन किसी जीव पर यह लागू होगा वो सब में होगा, कि जो अनंत विषयक शास्त्र का ज्ञाता है। अभी एक जीव पर हम अप्लाई करते हैं तो वेर एवर एप्लीकेबल जितने जीव हो गए उस सबको हम कहेंगे द्रव्यानंत, ज्ञायक शरीर द्रव्यानंत कहेंगे। एक जीव पर पहले समझ लेना, क्योंकि आपको भूत और भविष्य के शरीरों में आपको कुछ संदेह था कि ये शरीर की बात नहीं हो सकती, ऐसा आपका कल कहना था, परंतु ये जो ज्ञायक शरीर, ज्ञायक का शरीर है और उसमें तीनों काल के ही शरीर लिए है उसके अंदर, ख्याल है ना? उसकी और चर्चा आगे आएगी अभी। तो क्या कहते हैं, अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाले के यानी उस जीव के तीनों कालों में होने वाले शरीर को ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपका प्रश्न है अभी जो नहीं जानता है, जो भविष्य में जानेगा, हाँ भूत का, वो जब जानेगा तब, उस काल में आप कह सकते, अभी इस काल में नहीं। इस काल में उस जीव को क्या कहेंगे? वर्तमान में उस जीव को आप कह सकते भावी नो आगम द्रव्यानंत। वो जीव अभी जान नहीं रहा है, जीव भविष्य में जानेगा, ऐसे जीव को हम अभी क्या कह सकेंगे? भावी नो आगम द्रव्यानंत। और जब वो जानने लगेगा, उस काल में इस वर्तमान के शरीर को आप कह सकते हैं न्यायक शरीर, भूत ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंद। ख्याल है डिफरेंस? अभी जान तो नहीं रहा, तो अभी इस शरीर को नहीं कह सकते।
तो आप सिद्धों को किस में डालेंगे इसमें से, ये तीन जो है ना? हाँ, ये दूसरा जो है ना, दूसरे में डालेंगे या पहले में डालेंगे? बोलो देवेंद्र भाई। चलो ठीक है,
सिद्धों को द्रव्यानंत में डालेंगे ही नहीं, वर्तमान उपयोग से रही थी हमारी पहली कंडीशन है। ख्याल है ना? देखो देखो,
ये जो वो सच्चा नहीं है और ये सच्चा है,
उसकी बात यहाँ नहीं चल रही, अनंत संबंधी ज्ञान की बात चल रही। आप चौथे के जो क्षायिक की बात करते हैं, उसको तो सक्य यानी सम्यक ज्ञान है, उसकी बात यहाँ कहाँ हो रही है? वो क्षायिक, उसका सम्यक तो की अपेक्षा क्षायिकपना चल रहा है, उसका ज्ञान तो क्षोभसम ज्ञान है। और क्षोभशम ज्ञानी का उपयोग एक समय में कहीं एक में लगेगा। अभी उसने शास्त्र का अभ्यास किया है, अनंत के बारे में उसको सभी ज्ञान है, आगम का ज्ञान है। अब वो जाके दुकान पे बैठा है, उसका व्यापार में उपयोग चल रहा है, ऐसे जीव की बात चल रहा है, उसको वर्तमान में ज्ञाता कहते हम। वो जान रहा है कि नहीं जान रहा? अभी समय सार की बातें आपको अभी आपके ज्ञान में है, परंतु वर्तमान में उपयोग आप धवला में अभी है, तो वो समय सार का ज्ञाता कहेंगे उस जीव को, ख्याल है ना? इसमें लेना ही नहीं है। वो तो भाव रूप यानी तो उपयोग रूप ही है ना त्रिका, और यहाँ तो आगम यानी प्रवचन के ज्ञाता ऐसा है, वो तो सभी ज्ञाता ही ज्ञाता है, वो सब त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानते एक साथ। अभी शंका, ये जो हमारे मन में शंका उठती है, अभी यहाँ शंका समाधान करेंगे।
यहाँ जो द्रव्यानंद की बात ली है, वहाँ तो वर्तमान में उपयोग से रहित ऐसा कहा गया है, लेकिन वो तो उनका तो पूरा उपयोग में ही है,
उपयोग रूप ही है सब,
क्योंकि हमने देखा ना युगपत उपयुक्त दोनों के साथ एकदम, यानी उनके कोई लब्धि रूप है और कोई उपयोग रूप है ऐसा ज्ञान ही नहीं है, पूरे ही उपयोग रूप है, तो उनको किसी में नहीं डाल सकते, तो अगले में तो शरीर है ही नहीं, ये भी बात बराबर है, ख्याल में आ गया ना?
और ये हमारे ज्ञान के लिए ये निक्षेप करते हैं, क्षोभशमियों के लिए, शुद्ध ज्ञानियों के लिए। अनंत शब्द पर चल रहा है, अनंत के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात यहाँ चल रही है। मिथ्यात्वी जीवों की संख्या, आगम का ज्ञाता, हाँ हो जाएगा। अपनी कंडीशन क्या है? अनंत संबंधी शास्त्र ज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। देखो शंका अभी पूछते हैं, हमारी शंका यहाँ है, अनंत विषयक शास्त्र अर्थात अनंत विषयक शास्त्र का ज्ञाता आधेय है, आधेय यानी जो आधार लेता है वो आधेय, और उसका शरीर आधार है, बराबर है ना? शरीर आधार और जो उसका आधार से रहता है वो आधेय, ये सब उपचार से है, जीव शरीर के आधार है ऐसा नहीं है, परंतु अभी ये व्यवहार शास्त्र है ना, और हमें तो शरीर के साथ अभी संयोग है जीव का, तो वहाँ कहेंगे शरीर आधार है और जीव आधेय है। अतएव अनंत विषयक शास्त्र के ज्ञाता से आधारतया शरीर भिन्न है, इसलिए उस शरीर को अनंत यह संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है? हमने शरीर को अनंत कहा ना, ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत, यानी हमने शरीर को अनंत ऐसा कह दिया, किस आधार पर? कि वो जानने वाले जीव के आधारभूत है, इसलिए जानने वाला जीव इस शरीर के आधार से रहता है, या पूर्व काल में विशिष्ट शरीर के आधार से रहा था, भविष्य काल में वो विशिष्ट कुछ देव के शरीर के आधार से रहेगा, इसलिए तीनों काल के शरीरों को भी उस जीव का आधारभूत होने से उसको भी हमने द्रव्यानंत कह दिया, उसका नाम भी अनंत रख दिया। वो शरीर तो कुछ जानता नहीं है, वो प्रश्न वैसा ही है। देखो कि शास्त्र के जो ज्ञाता है, अनंत विषयक शास्त्र का जो ज्ञाता जीव है, उससे शरीर तो भिन्न है, वो तो कुछ जानता नहीं है, तो शरीर को अनंत ऐसे क्यों कहा? ये प्रश्न का उसका मतितार्थ है। अब उसका समाधान करते हैं, नहीं क्योंकि सौ तरवारे यानी सौ तरवार वाले दौड़ती हैं, सौ फरसा वाले दौड़ते हैं इत्यादि प्रयोग में, और तलवार और फरसा से भिन्न, परंतु उनके आधारभूत पुरुषों में भी जिस प्रकार आधेय रूप तलवार और फरसा यह संज्ञा देखी जाती है, उसी प्रकार प्रकृत में भी आधारभूत शरीर में आधेय का व्यवहार जान लेना चाहिए। क्या कहते हैं? पहले काल में तो तलवारधारी होते थे सिपाही, तो वो तलवार आधेय है, किसके आधार से रहती है? उस पुरुष के जो सैनिक है उसके आधार से वो तलवार रह रही, तो सौ तलवारधारी सिपाही दौड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या कहने में आता है? देखो सौ तलवारें दौड़ रही है, तो वहाँ जैसे आधारभूत तो पुरुष है, तो 100 पुरुष दौड़ रहे के बदले में 100 तलवारें दौड़ रही है ऐसा कहेंगे, या फरसा, फरसा भी वो हथियार है ना, या वो 100 धनुष दौड़ रहे, आजकल में कहेंगे 100 पिस्तौल दौड़ रहे, क्यों? यानी वो जीवों, यानी सैनिकों का नाम नहीं लेके हम वो तलवार का ही नाम लेके कहेंगे। ये बात मैंने कभी, मुझे भी मालूम नहीं था, हम कहीं गांव में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं अभी इस चातुर्मास में हमारे यहाँ 10 पिंची है, आपने सुना है 10 पिंची? आपने सुना होगा कभी? नहीं, वो अभी एमपी वगैरह में हम जाते हैं वहाँ बोलते हैं ऐसा, हमारे यहाँ भी 10 पिंची आई हुई है, यानी 10 महाराजों का, महाराज हो या आर्य का हो, उनका संघ आया हुआ है। तो ये भी मैंने पढ़ा तो मुझे वो याद आ गया। तो पिंची यानी वो कोई पिंची धारी यानी कौन है, श्रमण है ना, महाराज है या आर्य, महाराज यानी नग्न दिगंबर साधु है या आर्यिकाएं हैं, तो वो पिंची धारण करती है, वो उनका उपकरण है, उनका चिन्ह भी है ना, तो वो ऐसा ही कहते हैं 100 यहाँ 10 पिंची आई हुए। ये मैंने देवगा राजा वगैरह उसमें बहुत जगह सुना है ऐसा। हाँ, द्रोणगिरि बहुत जगह सुनते हैं हम तो जगह जगह जाते हैं ना, तो ऐसी बातें कहने की पद्धति है, ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ भी वही यानी उसी स्टाइल में बोला है कि 100 तलवारें दौड़ रही है। शंका, अभी दूसरी शंका पूछ रहे, यानी जैसे अभी यहाँ हमने कहा वैसे ही उस शरीर को भी द्रव्यानंत कहा है ना। शंका, वर्तमान काल में आधारभूत शरीर में आधेय का उपचार भले ही हो जाओ, यानी वर्तमान शरीर को तो आप भले उपचार से कहो तो कोई बात नहीं है, परंतु अतीत और अनागत कालीन शरीरों में यह व्यवहार नहीं हो सकता है। देवेंद्र भाई, आपका समाधान नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ है, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है ना कि वर्तमान के शरीर में तो आप ये उपचार भले करो कि वो ज्ञाता जीव है और ये उसका आधारभूत शरीर है, परंतु जो पहले भव के शरीर को और जो भविष्यकालीन जो शरीर होगा उसमें भी आप वही उपचार कर रहे हैं, ये कैसी बात, ये ठीक नहीं बैठती है, वो शंकाकार को भी नहीं बैठ रही थी। अथवा एक मिनट, उसका समाधान नीचे दिखा है, समाधान इसी पृष्ठ पर 13 नंबर पर, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जिसकी राजा रूप पर्याय नष्ट हो गई है अथवा जिसे भविष्य में राजा रूप पर्याय प्राप्त होगी, ऐसे पुरुष में भी जिस प्रकार राजा आता है यह व्यवहार देखा जाता है। अब श्रेणिक राजा को कारावास में डाला था, मालूम है कि नहीं आपको, तभी उसको क्या कहेंगे, ये राजा ही कहेंगे ना उसको, या जो अभी हमने देखा युवराज है अभी जिसका राज्याभिषेक नहीं हुआ, जो राजा नहीं हुआ है उसको भी राजा कहेंगे, ये राजे साहब आ रहे, तो उसमें भी जैसे उपचार होता है वर्तमान में भी उसको राजा कहने में आता है, वैसे ये तीनों काल के जो शरीर है उनको भी वो उस जीव का आधार है ऐसा कहेंगे, आधारभूत शरीर को उपचार कहेंगे उसमें। उसी प्रकार प्रकृत में भी समझ लेना चाहिए, प्रकृत में ने वर्तमान जो अपना विषय चल रहा है उसमें भी वही एप्लीकेबल है, वैसा ही समझ लेना चाहिए। फिर शंका, पर्याय और पर्यायी में, पर्याय तो हमें मालूम है और पर्यायी यानी उस पर्याय को धारण करने वाला वो पर्यायी द्रव्य, तो पर्याय और पर्यायी में भेद न होने के कारण वहां पर आधार आधेय भाव नहीं पाया जाता है। फिर भी यदि यहाँ भी आधार आधेय भाव माना जावे तो ज्ञायक शरीर और भावी इन दोनों के कथन में पुनरुक्तता प्राप्त हो जाएगी। क्या कहते हैं वो, अब यहाँ शरीर को आधार कहा और जीव को आधेय कहा, तो आधार की अपेक्षा यहाँ वो ज्ञायक शरीर के भूत भविष्य और वर्तमान से तीन भेद किए, इनका कहना है आधार और आधेय, आधेय कोई भिन्न है नहीं है, एक ही बात है, बराबर। तो जो चीज़ अपने भावी ज्ञायक शरीर के बारे में कही है और दूसरा जो भेद है ये भावी ज्ञायक शरीर वाला भेद और ये भावी नो आगम वाला भेद, तो यहाँ भी आधा आधे हम एक मानेंगे, तो ये जो भेद है और ये भेद है वो एक ही हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो शरीर को वो आधा आधे यानी वो पर्याय पर्याय ही समझ रहा है, दो भिन्न द्रव्य ऐसे नहीं मान रहा है, इसलिए वो सारी गड़बड़ कर रहा है, ख्याल है ना। शंकाकार शंका फिर पढ़ेंगे, पर्याय और पर्याय में भेद न होने के कारण वहाँ पर आधार आधेय भाव नहीं पाया जाता। फिर भी यदि यहाँ पर आधार आधेय भाव माना जावे तो ज्ञायक शरीर और भावी इन दोनों के कथन में पुनरुक्तता प्राप्त हो जाएगी, यानी रिपीटिशन होगी। वहाँ शरीर को कहा और यहाँ जीव को कहा, परंतु अब आप जीव और शरीर को एक ही मान रहे, तो उसमें रिपीटेशन होती है। उसका समाधान, यदि ऐसा है तो इस दृष्टांत को छोड़कर, यानी यदि उसको ऐसा लगता है तो आचार्य कहते हैं मैं दूसरा दृष्टांत देता हूं। सौ धनुष भोजन करते हैं, वही जैसे सौ तलवारें दौड़ती है, अब कहेंगे सौ तलवारें या सौ धनुष भोजन कर रहे हैं, तो प्रकृत में इस दृष्टांत को लेना चाहिए। यह दृष्टांत लेने से क्या होगा, सौ धनुष भोजन करते हैं, यह इसका अर्थ क्या है, सौ धनुषधारी भोजन करते हैं। तो जब धनुषधारी भोजन करते होंगे तो कंधे पर भोजन धनुष रखकर भोजन करेंगे कि उतार कर भोजन करेंगे, उतार कर ही करेंगे, परंतु वो तो धनुषधारी है। अभी जो सैन्य है वो रुक गया कहीं, तो सब अपने अपने आयुध रख कर भोजन करेंगे कि नहीं। वैसे यहाँ क्या कहते हैं, सौ धनुष भोजन कर रहे हैं, इस दृष्टांत को लेना चाहिए। धनुषों को धारण करने रूप अवस्था में उसमें ही सौ धनुष भोजन करते हैं, यह व्यवहार नहीं होता है। ये सौ धनुष भोजन करते व्यवहार कब होगा, कि वो धनुष उतार कर भोजन करेंगे तब। फिर भी वो पहले उन्होंने धनुष धारण किया था और बाद में भोजन के बाद फिर धारण करेंगे, है ना, तो उसमें भी वो उपचार होता है। यह दृष्टांत अधिक उसमें नजदीक है। देखो फिर पढ़ती हूँ दूसरे लाइन से, धनुषों को धारण करने रूप अवस्था में उसमें ही सौ धनुष भोजन करते हैं, यह व्यवहार नहीं होता है। परंतु किंतु धनुषों को दूर करके भोजन करने वालों में भी सौ धनुष भोजन करते हैं, इस प्रकार व्यवहार देखा जाता है। यानी अभी वो भोजन करते समय भी उनको वो धनुषधारी ही कहेंगे हम, ख्याल है। किंतु यहाँ पर घृतकुंभ का दृष्टांत लागू नहीं होता, यानी यह धनुष वालों का दृष्टांत तो लागू होता है। घृतकुंभ है ना, क्या घी का घड़ा, घृत है ना घी, कुंभ है ना घड़ा मटका, ये जो कुछ बेसल माटी का जो बर्तन होता है। क्योंकि घट में घृत इस प्रकार का व्यवहार नहीं पाया जाने के कारण दृष्टांत और दार्ष्टांत में साधर्म्य नहीं है। दृष्टांत यानी जो हम उदाहरण देते हैं उसको दृष्टांत कहते हैं, और वो दृष्टांत जिस पर घटित किया जाता है उसको दार्ष्टांत कहते हैं, जो मूल बात हमें बतानी है उसको दार्ष्टांत कहते हैं, और जिस उदाहरण के द्वारा मीडियम से हम समझाते फॉर एग्जाम्पल करके उसको दृष्टांत कहते हैं। यानी यहाँ सौ धनुष भोजन करते ये दृष्टांत सही लागू होता है, परंतु वो घी का घड़ा वाला दृष्टांत इसमें नहीं होगा। ये आधार आधेय की बात चल रही ना, वहाँ भी घी का जो घड़ा है वो आधार है और उसके आधार से घी रहता है, हम घी रखते हैं, उसका यहाँ नहीं, उसका दृष्टांत यहाँ पर लागू नहीं होता, ऐसी बात है। इसी का विशेषार्थ कहते हैं। फिर दोबारा नो आगम द्रव्य निक्षेप के तीन भेद है, वो निक्षेप बराबर करना जरा, प्रिंट बराबर नहीं आया। देखो हमने मूल में द्रव्य द्रव्यानंत के भेद देखना शुरू किया था, उसमें आगम द्रव्यानंत हमने बरोबर समझा है कि आगम का ज्ञाता है परंतु वर्तमान उपयोग से रहित है, ऐसे जीव को आगम द्रव्यानंत कहते हैं। अब यहाँ नो आगम द्रव्यानंत की बात चलेगी। तो नो आगम द्रव्य निक्षेप के तीन भेद है, ये निक्षेप लिखा ना, अब जब अनंत की बात करेंगे तब हम यहाँ द्रव्य निक्षेप कहा तो हम द्रव्यानंत कहेंगे, जब मंगल की बात देखे रहे थे तब द्रव्य मंगल कहा था हमने, जो कुछ बात आएगी वहां उसके आगे वो लगा देना। तो यहाँ नौ आगम द्रव्य निक्षेप के तीन भेद है, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ये मूल तीन भेद नौ आगम वाले। अब ज्ञायक के और तीन भेद करेंगे। इनमें से ज्ञायक शरीर में ज्ञाता का, ज्ञाता यानी अनंत संबंधी शास्त्र का ज्ञाता है, उस ज्ञाता का त्रिकाल भावी शरीर लिया जाता है। त्रिकाल भावी शरीर का अर्थ क्या है? भूतकाल का शरीर, वर्तमान का शरीर और भविष्यकाल का शरीर। और भावी में, भावी नाम का जो नौ आगम का सेकंड दो नंबर का भेद था ना, भावी नौ आगम वाला, ये ज्ञायक शरीर का भावी वाला भेद चल रहा है, भविष्यकालीन शरीर की बात है। और जो भावी नौ आगम वाला है उसमें जीव को लेना है, उसमें शरीर की बात नहीं है। परंतु कौन सा जीव? जो अभी ज्ञाता नहीं है परंतु भविष्य में होगा ऐसा जीव। देखो क्या है, भावी में जो वर्तमान में ज्ञाता नहीं है किंतु आगे होगा उसका ग्रहण किया जाता है। ये डिफरेंस ख्याल में आया? न्यायक शरीर में भी एक भावी नाम का भेद है, उसमें शरीर को कहा है नवागम द्रव्यानंद, और ये जो भावी नवागम वाला जो भेद है उसमें जीव को कहा है नवागम द्रव्यानंद, क्योंकि वह जीव भविष्य काल में जाकर वो ज्ञाता होने वाला है। अब यदि जो पर्याय पहले हो चुकी है या आगे होगी उसे ही ज्ञायक शरीर का अतीत और भावी मान ले, तो ज्ञायक शरीर भावी नौ आगम द्रव्य में और भावी नौ आगम द्रव्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए ज्ञायक शरीर में संबंध प्राप्त भिन्न आधार में आधेय का उपचार किया जाता है और भावी में क्या कहते हैं? ज्ञायक शरीर और भावी का डिफरेंस बता रहे हैं। ज्ञायक शरीर तो भिन्न आधार है ना, इसी जीव का अभी वर्तमान में कोई शरीर आधार है, भूतकाल में कोई अन्य आधार, अन्य शरीर आधार था और भविष्यकाल में अन्य शरीर आधार होगा, उस आधार को हमने उपचार से द्रव्यानंद कह दिया, नौ आगम द्रव्यानंद। अब भावी में क्या होगा? देखो भावी में वही वस्तु यानी वही जीव। वस्तु क्यों कहा? क्योंकि हम निक्षेप समझा रहे और हम अनंत वाला भेद समझ रहे, तो हम कहेंगे वही जीव। तो भावी में वही वस्तु आगे होने वाली पर्याय रूप से कही जाती है ऐसा समझना चाहिए। यानी जो भावी नौ आगम द्रव्यानंत में क्या कहेंगे हम? वही वस्तु यानी वही जीव। वही जीव क्या? आगे होने वाली पर्याय रूप। आगे कौन सी पर्याय होने वाली है? अनंत का ज्ञाता होने वाला है, ज्ञान की वो पर्याय उसकी होने वाली है, उसको अभी से कहना, उस जीव को अभी द्रव्यानंत कहेंगे। अनंत को जानने वाला यानी वो कैसा? नौ आगम वाला। आगम नहीं कहेंगे, जो वर्तमान में जान रहा है उसको आगम द्रव्यानंत कहेंगे, जो वर्तमान में नहीं जान रहा है परंतु भविष्य काल में जानेगा उसको भावी नौ आगम द्रव्यानंत कहेंगे। क्या ला? ये ज्ञायक शरीर वाला भावी और ओरिजिनल भावी, इसमें यह डिफरेंस है। यद्यपि पहले आधार में आधेय का उपचार दिखाने के लिए असिसदम धावदी इत्यादि दृष्टांत दे आए हैं। असिसदम धावदी यानी क्या? हाँ, तलवार वाले। कितने तलवार वाले? 100। असी यानी तलवार, सद यानी शत है ना, यानी 100 तलवार दौड़ रही है ऐसा कहते हैं। इत्यादि दृष्टांत दे आए हैं जिसमें यह समझ में आ जाता है कि जिस प्रकार तलवारधारी 100 पुरुषों के दौड़ने पर 100 तलवारें दौड़ती है इत्यादि रूप से व्यवहार होता है, उसी प्रकार अनंत आदि विषयक शास्त्र के ज्ञाता के शरीर को भी नौ आगम द्रव्यानंत आदि कह सकते हैं। जैसे वो तलवारें जीव के पुरुषों के आधार से और पुरुष दौड़ते हैं कहने के बदले तलवारें दौड़ती ऐसा कहा था, वैसे यहाँ ज्ञाता तो जीव है परंतु उस शरीर के आधार से रह रहा है, इस शरीर को भी वहाँ नौ आगम द्रव्यानंत कह दिया। ख्याल है? हाँ। तो क्या कहते हैं कि जो वर्तमान के तो उसको तो द्रव्यानंत आदि शरीर कह सकते हैं, परंतु जो शरीर अभी प्राप्त नहीं हुआ है, आया नहीं आया, अभी जो शरीर प्राप्त ही नहीं हुआ है या प्राप्त होगा उसे कैसे नौ आगम द्रव्यानंत आदि कह सकते हैं? यही प्रश्न था, भूतकालीन और भविष्यकालीन शरीर को कैसे नौ आगम द्रव्यानंत कह सकते हैं? क्योंकि उपचार संबद्ध पदार्थ में होता है, संबद्ध है ना, जिसके साथ अभी संबंध है, संयोग है, उसके साथ उपचार होगा। भूतकालीन शरीर के साथ और भविष्यकालीन शरीर के साथ तो अभी संबंध है ही नहीं है, तो उसमें उपचार आप क्यों कहते हैं? आप कह रहे ना भूत ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत या भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यानंत, ऐसा उपचार आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा सवाल है। उसका समाधान यह है कि जिस प्रकार धनुषों को दूर रखकर भोजन करने पर भी धनुषदम भुंजदि यह व्यवहार बन जाता है, धनु यानी धनुष, शत यानी सौ धनुष भोजन कर रही, उसी प्रकार अतीत और अनागत शरीर की अपेक्षा भी उपचार से आधार आधेय भाव मानकर नौ आगम द्रव्यानंत आदि संज्ञा बन जाती है। क्या कहा यहाँ? अतीत और अनागत शरीर, अभी समाधान हुआ कि नहीं? अभी मैं कहती हूँ इसलिए नहीं, ये आगम की बात है, ये कोई अपने अपनी स्वयं की बात रखना ही नहीं और स्वयं का आग्रह भी नहीं रखना। जब आगम में कोई बात आती है तो हमें जैसे वहाँ है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, ख्याल है ना? ये तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, किसी ये आचार्य भी कहते हैं हमारा कुछ नहीं इसमें, ये मूल जो परंपरा से आई हुई बात है। ये तो ज्ञायक शरीर की बात हो गई, अब भावी की बात करेंगे। जो जीव पहले ज्ञायक शरीर में शरीर को कहा था, ज्ञायक शरीर को यानी ज्ञायक के शरीर को वो ज्ञायक शरीर नौ आगम द्रव्यानंत कहता, अब भावी में जीव को कह रहे हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। तो जो जीव भविष्य काल में अनंत विषयक शास्त्र को जानेगा उसे, यानी उस जीव को अभी वर्तमान में क्या कहना है कि भावी नौ आगम द्रव्यानंत कहते हैं, ख्याल है ये बात? उस जीव को कहना है, ज्ञायक शरीर में शरीर को कहा था, वो भले वो पहले वाला शरीर हो, वर्तमान का हो या भविष्य काल का हो, अब यहाँ जीव को ही कह रहे, परंतु कंडीशन वर्तमान में ज्ञाता नहीं है, भविष्य काल में जानेगा। अब ये तो भावी की बात हो गई, हमने तीन नौआगम के तीन भेद देखे थे, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी और तीसरा तद व्यतिरिक्त। अब तद व्यतिरिक्त की बात करते हैं, तो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यानंत, वो न लिख देना उसमें, द्रव्यांत हुआ है, एक न बीच में डालना, मिला डॉक्टर साहब? मिला क्या? हाँ, द्रव्यानंत, एक न एडिशनल, तद व्यतिरिक्त आगे जो है ना द्रव्यानंत, देखो मैं पढ़ रही अभी, अभी तीसरे भेद की बात बता रहे। तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्यानंत दो प्रकार का है, ये तद व्यतिरिक्त में भी दो डिफरेंस, कौन से दो है? तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्यानंत, कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्यानंत और नो कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्यानंत। देखो हमने नौ आगम द्रव्यानंत के तीन भेद देखे थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। अब तद व्यतिरिक्त का भेद चल रहा है, उसमें दो भेद, कर्म और नो कर्म, उसके आगे पूरा लंबा चौड़ा नाम जोड़ दो, तो कैसे हो गए? कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यानंत और नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यानंत, ख्याल है? उसमें से अभी कर्म की बात करते हैं, ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के प्रदेशों को कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्यानंत कहते हैं, कर्म के प्रदेशों को, ये जो आठ कर्म है वो कर्मों के प्रदेशों को कहेंगे नौ आगम द्रव्यानंत। और बाकी जो कुछ चीजें हैं, कटक, कटक का अर्थ होता है सैन्य, रुचकवर आर्मी, रुचकवर द्वीप और समुद्र आदि, यानी जो कुछ अभी कुछ भी उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ले लिए, द्वीप समुद्र आदि आदि सब, अथवा एक प्रदेश आदि पुद्गल द्रव्य, एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य आदि सब उसमें ले लिया, ये सब नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यानंत है। कर्म में तो आठ कर्मों को लेना, और नौ कर्मों में अन्य चीजें लेना। शंका, जो आगम का अध्ययन करके भूल गया है, ये आपका प्रश्न था ना, पहले कर लिया था अभी वर्तमान में वो भूल गया है, उसका द्रव्य निक्षेप के किस भेद में अंतर्भाव होता है? समाधान, ऐसे जीव का तद व्यतिरिक्त तो नौ कर्म द्रव्यानंत में अंतर्भाव होता है। अब यहाँ तक ये सब द्रव्यानंत के भेद पूरे हो गए। द्रव्यानंत के मूल भेद दो देखे, आगम और नो आगम। आगम में आगम शास्त्र का ज्ञाता जीव वर्तमान में उपयोग से रहित लिया, उसको हम कहेंगे आगम द्रव्यानंत। नो आगम द्रव्यानंत के तीन भेद देखे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर में ज्ञायक का शरीर यानी उसका भूतकालीन शरीर, वर्तमान का शरीर, भविष्यकाल का शरीर लिया, तीन भेद देखे। भावी में वह जीव लिया जो वर्तमान में जान नहीं रहा है परंतु जो भविष्यकाल में जानेगा, वो भावी नो आगम द्रव्यानंत है। और तद व्यतिरिक्त में कर्म और नो कर्म लेना, कर्म में तो आठ कर्म और नो कर्म में अन्य चीजें, ख्याल है? हाँ, तद व्यतिरिक्त बता दिए, कर्म और नो कर्म। अब ये हम जो 11 प्रकार के अनंत देख रहे थे, पेज नंबर 11 पर है, नीचे नीचे जो 8 नंबर के श्लोक का अर्थ किया था ना, सबसे नीचे, उसमें से नामानंत, स्थापनानंत, द्रव्यानंत की बात हो चुकी, अब शाश्वतानंत की बात करेंगे। हाँ, ये द्रव्यानंत में थोड़ा जरा मेरे को कसरत करनी पड़ती है, बाकी तो आसान है। अब यहाँ 15 पृष्ठ पर आते हैं फिर। शाश्वतानंत किसको कहना? तो शाश्वतानंत धर्मादि द्रव्यों में रहता है, क्योंकि धर्मादि द्रव्य शाश्वतिक होने से उनका कभी भी विनाश नहीं होता। अनंत शब्द के बहुत अर्थ है, संख्या के लिए भी अनंत होता है, जिसका कभी अंत नहीं उसको भी अनंत कहते हैं, जो अंतिम भाग कोई किसी वस्तु का जो अंत में अंत जो होगा उसको भी अनंत कहेंगे हम, या जिसका कोई अंत नहीं है, दूसरा कोई एंड नहीं है, तीसरा कोई विभाग नहीं, उसको भी अनंत कहेंगे। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? जो शाश्वत रहता है, जो अनादि अनंत काल तक टिकता रहता है, उसको भी अनंत कहा। तो कौन सा द्रव्य होगा शाश्वत अनंत? हाँ, सभी द्रव्य, छह द्रव्य शाश्वत अनंत हो जाएंगे। नहीं, प्रेरणा बेन ने कुछ नहीं कहा था, इन्होंने ही कहा। ये कुछ भी एक नाम लिया, जीवादि न लिखते हो धर्मादि लिखा, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं कि जीव नहीं है, सभी छह द्रव्य शाश्वत अनंत है।
अनंत संख्या की अपेक्षा नहीं बता रहे, कायम टिकने वाला शाश्वत,
कभी अंत यानी विनाश नहीं होगा, उस अपेक्षा से उसको अनंत कहा।
अनंत ये भी ले सकते हम,
देखो इसको फिर पढ़ते। शाश्वत अनंत धर्मादि द्रव्यों में रहता है, क्योंकि धर्मादि द्रव्य शाश्वतिक होने से उनका कभी भी विनाश नहीं होता। तो हम एक द्रव्य है कि नहीं है? तो हम शाश्वत अनंत है कि नहीं है? हा? अब पांचवे पॉइंट पर, पांचवा अनंत, गणना अनंत। वह बहुवर्णनीय और सुगम है। गणना अनंत यानी संख्या में, जिसकी गणना यानी हम काउंट करते हैं, संख्या में जो अनंत है उसको गणना अनंत कहेंगे। बहुवर्णनीय और सुगम है यानी तो समझने में आसान है, उसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अब अगला वाला अप्रदेशिका अनंत, छठे नंबर का अनंत है, उसको कहते हैं अप्रदेशिका अनंत। एक परमाणु को अप्रदेशिका अनंत कहते हैं। अप्रदेशिक यानी उसका दूसरा प्रदेश, दूसरा विभाग नहीं हो सकता। परमाणु या किसी, अभी हम किसी स्कंद को टुकड़े करते 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 परमाणु तक ही करेंगे, उसके आगे उसका और टुकड़ा नहीं हो सकता, वो उसका अंतिम है ना, तो परमाणु का वो अनंत कहेंगे वो, तो उसको कैसा? अप्रदेशिक अनंत उसका नाम। अब शंकाकार क्या पूछ रहा है देखो। हाँ, कालानुभियोग द्रव्यत्व के प्रति अविशिष्ट, ऐसे द्रव्यत्व की प्रति अविशिष्ट है ने, द्रव्यत्व की अपेक्षा से, द्रव्यपना की अपेक्षा से जो दोनों ही समान है, ऐसे क्या कहा? द्रव्यत्व के प्रति अविशिष्ट है ने, द्रव्य की अपेक्षा से समान ऐसे, शाश्वत अनंत और अप्रदेश अनंत का नौकर्म द्रव्यानंत में अंतर्भाव क्यों नहीं हो जाता है? क्या कहा? शाश्वत अनंत में छह द्रव्य जो है शाश्वत है उसको लिया है, अप्रदेश अनंत में जो परमाणु जो है जिसका दूसरा विभाग नहीं होता है परंतु वो परमाणु भी द्रव्य ही है, यानी शाश्वत अनंत का द्रव्य कहो या परमाणु रूप द्रव्य कहो वो तो द्रव्य ही है, तो द्रव्य की अपेक्षा से समान ही है दोनों। और जो नौकर्म द्रव्यानंत हमने देखा था, नौकर्म द्रव्यानंत में भी हमने परमाणु की बात देखी थी, कर्म में कर्म को लिया था और नौकर्म में परमाणु आदि सब लिए थे, तो वहां भी परमाणु का नाम आया था, तो वहां तो उसको क्या कहा था? नौकर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्यानंत। और अभी उसी परमाणु को क्या कह रहे हैं? अप्रदेशिक अनंत। और शाश्वत अनंत की बात आएगी तो उसी परमाणु द्रव्य को शाश्वत अनंत कहते हैं, तो ऐसा क्यों? ये शंकाकार की शंका है। हाँ, नो कर्म द्रव्यानंत में क्यों नहीं लिया, नो कर्म द्रव्यानंत में क्यों नहीं लिया उसको? तो उसका समाधान करते हैं, नहीं, क्योंकि शाश्वत अनंत का नौकर्म द्रव्यानंत में तो अंतर्भाव होता नहीं है, क्योंकि इन दोनों में परस्पर भेद है। शाश्वतानंत में जब हम अनंत कहते हैं तो कभी भी विनाश नहीं होगा, इस अपेक्षा है, ख्याल है ना? अब ये भेद समझाएंगे यहाँ, तो उसका स्पष्टीकरण करते हैं। अंत विनाश को कहते हैं, जिसका अंत अर्थात विनाश नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। द्रव्य शाश्वत अनंत है और नौकर्म द्रव्यगत अनंतता की अपेक्षा और कटकादि के वस्तुतः अंत के अभाव की अपेक्षा अनंत है, इसलिए इन दोनों में एकत्व नहीं हो सकता है। क्या कहते हैं? ये द्रव्य कभी विनाश नहीं होता इसलिए उसको हमने शाश्वत अनंत में लिया है, बराबर। अब जो वो नौकर्म की बात की थी वहां पर, तो नौकर्म द्रव्यगत अनंत है, यानी नौकर्म में वो अनंत अन्य अन्य सभी द्रव्य हो जाएंगे, तो वहां उस अपेक्षा से उसको अनंत कहा था। नौकर्म में कर्म को छोड़कर अन्य सभी चीजें वो नौकर्म में ली थी, तो उस अपेक्षा से वहां अनंत कहा था उसको, यानी वो अनंत कहने की अपेक्षा दोनों में डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, इसलिए शाश्वत अनंत जुदा है और वो नौकर्म तद व्यतिरिक्त वाला अनंत जुदा है। अभी वो प्रदेश अप्रदेश अनंत उसको समझा रहे, एक प्रदेशी परमाणु में उस एक प्रदेश को छोड़कर अंत इस संज्ञा को प्राप्त होने वाला दूसरा प्रदेश नहीं पाया जाता। क्या कहते हैं? वो एक प्रदेशी जो परमाणु है वही अंतिम उसका विभाग है, तो उसको छोड़कर अन्य कोई ऐसा नहीं है कि जो अन्य अंतिम विभाग को प्राप्त होता है, ऐसा कोई दूसरा प्रदेश नहीं पाया जाता, इसलिए परमाणु अप्रदेशानंत है, यानी उसको अप्रदेशानंत कहने का प्रयोजन अलग है। नौकर्म तद व्यतिरिक्त में अनंत कहा था उसका प्रयोजन अलग है, और शाश्वतानंत में जो अनंत उसको नाम दिया था उसका अर्थ ही अलग है, शाश्वत रहने की अपेक्षा उसको अनंत कहा था, तो ये अलग अलग जगह अनंत का अर्थ अलग अलग है, इसलिए परमाणु को तीनों जगह हम फिट कर सकते हैं फिर भी उनकी अपेक्षा अलग अलग है, यानी नौकर्म द्रव्यानंत में अलग अपेक्षा है, शाश्वतानंत में अलग अपेक्षा है और अप्रदेशिकानंत में अलग अपेक्षा है। ऐसी स्थिति में द्रव्यगत अनंत संख्या की अपेक्षा वहां जो नौकर्म में अनंत द्रव्य थे उसको कहते द्रव्यगत अनंत संख्या। द्रव्यगत अनंत संख्या ने वहां कितने द्रव्य, तो अनंत द्रव्य, इसलिए उसको अनंत कहा था। तो द्रव्यगत अनंत संख्या की अपेक्षा अनंत संज्ञा को प्राप्त होने वाले नौकर्म द्रव्यानंत में, यानी नौकर्म द्रव्यानंत में क्या है? अनंत द्रव्य है, इसलिए वहां संख्या की अपेक्षा अनंत है, इसलिए वहां अनंत कहा था। वह अप्रदेशानंत, उसको जरा ठीक करना, अप्रेदशानंत हुआ है, वो प्र के ऊपर निकाल के द के ऊपर देना खाना उसका मात्रा। पिनाक भाई समझ में? हाँ, क्या कहते हैं? नौकर्म द्रव्यानंत में जो अन्य अनंत द्रव्य है उसको संख्या की अपेक्षा लिया था, और अप्रदेशिकानंत में वह अप्रदेशानंत कैसे अंतर्भूत हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता, ये कैसे नहीं हो सकता, अभी हमने देखा ना अप्रदेशिका, क्योंकि वो तो अंतिम भाग है उसका और उसके कोई विभाग नहीं होते। कटक यानी सैन्य, आर्मी, इसलिए अप्रदेशानंत भी स्वतंत्र है, यानी शाश्वतानंत स्वतंत्र है, यानी भिन्न अलग है, अप्रदेशिकानंत अलग है, और वो नो कर्म तद व्यतिरिक्त वाला वो अनंत भी अलग है। फिर शंका, द्रव्य के प्रति एकत्व तो उनमें पाया ही जाता है, फिर वही बात कि द्रव्य के प्रति एकत्व यानी द्रव्य की अपेक्षा तो समान ही है सब, ख्याल है, द्रव्य की अपेक्षा हम देखेंगे वो भी परमाणु है, वो भी परमाणु, वो भी परमाणु है, उसका समाधान। इन अनंतों में यदि द्रव्य के प्रति एकत्व पाया जाता है तो रहा आवे, यानी भले वही का वही द्रव्य है, परंतु इतने मात्र से इन अनंतों में अन्य अन्य प्रकार से आए हुए अनंत्य के प्रति, अनंत्य यानी अनंतपना, तीन भिन्न भिन्न अनंत कहे यहाँ, नवकर्म द्रव्यानंत कहा वो तद व्यतिरिक्त वाला, दूसरा एक शाश्वतानंत कहा और एक अप्रदेशिकानंत कहा, तो वहाँ अनंत कहने का जो उसकी अपेक्षा थी वो भिन्न भिन्न है, यानी वहाँ जो उनका अनंतपना है वो अलग अलग है, कहीं संख्या की अपेक्षा कहा, कहीं अविनश्वर है इसलिए कहा, और कहीं उस छोटे में छोटा है परमाणु इसलिए कहा, तो वो अनंत के प्रति उसका एकत्व नहीं है। द्रव्य के अपेक्षा देखने पर वो सभी समान ही है, फिर भी अनंत की जो तीन अनंत अलग अलग नाम दिए हैं उसमें समानता नहीं है, वो भिन्न भिन्न अनंत है। अनंत्य यानी अनंतपना, अनंतपना, अनंत्य यानी उसका अर्थ है वो अलग अलग प्रकार के अनंत है। अनंत्य में भेद है का अर्थ क्या है, अनंत्य के प्रति एकत्व नहीं का अर्थ क्या है, वे भिन्न भिन्न प्रकार के अनंत है। अभी आगे वाला एकानंत, ये सात नंबर पर आ गए हम, एकानंत, लोक के मध्य से आकाश प्रदेशों की एक श्रेणी को देखने पर, देखो जैसे वस्त्र है, कोई साड़ी है वो ताने बाना होता है ना, तो एक धागा पकड़, अभी हम साड़ी की लंबाई में देखेंगे तो एक धागा पकड़ कर चलेंगे तो कितने, वो जितने 6 मीटर की समझो साड़ी होगी तो वहां तक चले जाएगी ना, वही एक धागा, वैसे लोक के मध्य से आकाश की एक श्रेणी ले लेंगे, श्रेणी यानी पंक्ति रूप, एक एक प्रदेश की एक सीधी, कहां से जाएगी वो, पूरे ही आकाश द्रव्य में वही एक श्रेणी चलेगी, हम देखें ना उसी श्रेणी पर जीव ऊर्ध्वगमन करता है, तो वो लोकाकाश के मध्य से हम देखेंगे वो वही श्रेणी, ऊपर देखेंगे तो कहां जाके समाप्त होगी, होगी नहीं समाप्त। आकाश की एक श्रेणी को लंबी लाइन हमें सीधी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो 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 चलो, लोकाकाश के अंत तक आ गए, उसके ऊपर चलो अलोकाश में चले जाए, अलोकाकाश में, तो कहाँ खत्म होगी, होगी ही नहीं, हाँ अनंत है ना आकाश, तो क्या कहते हैं, लोक के मध्य से आकाश प्रदेशों की एक श्रेणी को देखने पर उसका अंत नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे एकानंत कहते हैं, यानी किसी एक डायरेक्शन में चले जाओ आप श्रेणी पकड़कर तो कहीं उसका अंत नहीं आएगा, उसका नाम है एकानंत। अब अगला, नहीं इसको कुछ अलग समझाना चाहते, देखो द्रव्य भेद का आश्रय लेकर स्थित द्रव्यानंत में यह एकानंत अंतर्भूत नहीं होता है, शंकाकार शंका पूछने के पहले बता देते हैं, ये जो एकानंत है वो जो द्रव्यों के भेदों में वो उसका जो अंतर्भूत नहीं हो जाता है, क्योंकि यह एकानंत एक आकाश द्रव्य का अंत नहीं दिखाई देने के कारण उसका आश्रय लेकर स्थित है, जैसे अपार समुद्र, अथाह जल इत्यादि, जैसे पैसिफिक ओशन के बीच में हम खड़े रहेंगे तो वो कितना हमको सभी जगह बिल्कुल, हम क्या कहेंगे उसको, अपार समुद्र, जिसका पार नहीं है ऐसा वो अपार है, उसका पार फिर भी हमें ऐसे बड़ी बड़ी चीजें देखेंगे तो हमें क्या लगता है, वो अपार है। अथाह का क्या अर्थ होता है? उसकी गहराई। अथाह यानी क्या? इतना डीप है वो, उसको उसका था नहीं, यानी उसका नीचे का तल, तल ये नहीं समझ में, डेप्थ उसकी, विदाउट एनी लिमिट, ऐसा उसको अथाह जल कहते हैं, समझाने के लिए। हमें तो मालूम है कि उनको एंड है, फिर भी समझाने के लिए उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। गहराई नहीं कहेंगे, जिसको नीचे का बॉटम ही नहीं उसको अथाह कहेंगे। अथाह है जिसका जिसका बॉटम लगता ही नहीं, ओ यानी नहीं, यानी जो बहुत डीप है ना उसको ऐसे अथाह जल कहते हैं। नीचे तो उसको डेफिनेटली तल तो होगा ही, पानी का कोई कितना भी गहरा समुद्र क्यों ना हो, उसका नीचे तो तल तो होगा ही है ना, फिर भी उसको क्या कहें, इसका कुछ था ही नहीं लगता, इसको अथाह है, अथाह जल इत्यादि। ये तो उदाहरण के तौर पर दिए। आकाश द्रव्य में तो कितने ही दसों दिशा में कहीं पर चले जाओ उसका कोई एंड ही नहीं है, तो उसको ये एकानंत जो है वो आकाश द्रव्य में ये घटित होगा। अब उभयानंत समझाते हैं। आठवें नंबर पर, लोक के मध्य से आकाश प्रदेश पंक्ति को दो दिशाओं में देखने पर, पहले हमने एक ही दिशा में देखा था, किसी एक दिशा में, अभी ऊपर भी देखो और नीचे भी देखो, हाँ, तो दोनों दिशाओं में देखने पर उसका अंत नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे उभयानंत कहते हैं। जो एकानंत को समझाया वही ऐसा उभयानंत, दोनों ओर देखना है। अभी अगला वाला जो विस्तार अनंत है, आकाश को प्रतर रूप से देखने पर, देखो प्रतर क्या होता है, प्रतर यानी एक लेवल पर जो स्प्रेड होता है उसका, उसको प्रतर कहते हैं। कोई चीज जो अभी क्यूबिक है, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल नहीं समझाना यहाँ, उसका अंत नहीं है ऐसा समझाना है। देखो आकाश तो घन स्वरूप है, क्यूबिकल जिसको हम कहेंगे, अभी हम उसको पहले तो पहले एक सिंगल लाइन में देख रहे थे ऊपर से नीचे तक, एक ही दिशा में देखो तो वो एकानंत, दोनों जगह देखो तो दोनों का ही अंत नहीं है तो उभयानंत हुआ। अभी एक एक प्रदेशी ऐसी पूरी एक लेयर ले लो आप, ऐसा तो उसको प्रतर कहते हैं, लंबी यानी रुंदी, उसको डेप्थ नहीं ले रही अभी,
एक प्रदेश होगी,
एक लेयर खाली, एक प्रदेशी लेयर पूरे आकाश का ले लेंगे तो उसका भी कहीं अंत नहीं है, उसका विस्तार 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 है, फैला हुआ ही है। जैसे थिन पेपर है, ये बुक अलग है, अब बुक को कोई डेप्थ है ना, इसकी लंबी है रुंदी है और इसकी चौड़ाई भी है, परंतु अगर हम इस सिंगल पेज इसका देखेंगे, सिंगल पेज, तो उसको प्रतर कहेंगे। कोई एक सिंगल पेज लेंगे तो उसको कोई एक प्रदेशी है, एक प्रदेशी पूरा लेयर, हाँ हाँ एक प्रदेशी है, ऐसे पूरी लंबी रुंदी लेना, उसको थिकनेस ऐसे विड्थ नहीं लेना उसमें, उसको प्रतर, हाँ वो भी ऐसा साइड टू साइड है मगर उसमें भी 12 अंगुल की थिकनेस है, मगर वो तो 12 या 36 होता है, जो खड़े हैं उनके 12 अंगुल होता है, जो बैठे उनके 36 अंगुल होता है, परंतु ये एक प्रदेशी थिन ऐसा जो हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर स्क्वायर की जो एरिया है उसको विस्तार या उसको प्रतर कहते हैं। जैसे हम रूम कैसे गिनते हैं स्क्वायर फुट, तो वो उसका क्या हुआ, प्रतर ले प्रतर हुआ, इसकी अगर हाइट उसमें हम गुणा करेंगे उसको तो वो घन हो जाएगा उसका, तो ये प्रतर क्षेत्र की बात है। देखो क्या कहते हैं, आकाश को प्रतर रूप से देखने पर उसका अंत नहीं पाया जाता, उसका क्षेत्रफल कितना है उसकी बात नहीं चल रही, ये प्रतर रूप उसको आकाश को देखो तो भी उसका कहीं अंत है ही नहीं है, इसलिए उसे विस्तारांत कहते हैं। यानी एकानंत उभयानंत विस्तारानंत, ये आकाश द्रव्य पर ही घटा रहे सब। अब उसके बाद घन रूप की भी बात आ गई। हाँ, अब पहले तो हमने एक प्रदेशी थिन लेयर देखा पूरा आकाश को ऐसा चौरस, अभी वो उसका क्यूबिकल देखना है। आकाश तो क्यूबिकल है, घन स्वरूप है ना, थ्री डायमेंशनल है। पहले तो हमने दो ही डायमेंशन देखे, हाँ अब ये तीसरी डायमेंशन भी उसको मल्टीप्लाई करना। तो क्या कहते हैं उसको, आकाश को घन रूप से देखने पर उसका अंत नहीं पाया जाता। कोई भी हम घन फिगर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं क्यूबिक, तो उसको हम देखते हैं, काउंट करते हैं इसकी इतनी रुंदी है, उसका एंड है, तभी तो उसकी रुंदी है, ऊंचाई है, और वो सब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। परंतु अभी सभी सभी दिशाओं में चले जाए, उसका कहीं भी अंत नहीं, घन रूप से उसका अंत नहीं है, उसको कहेंगे सर्वानंत। देखो, आकाश को घन रूप से देखने पर उसका अंत नहीं पाया जाता, इसलिए उसे सर्वानंत कहते हैं। और उसके बाद ग्यारहवा अंतिम अनंत भावानंत। आगम और नो आगम की अपेक्षा भावानंत दो प्रकार का है। अभी भावानंत में हमेशा भाव जो निक्षेप होता है, तो वर्तमान पर्याय से युक्त को भावानंत भाव निक्षेप कहते हैं। द्रव्य निक्षेप में हमने क्या कहा था, वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूत और भविष्य के पर्याय को हमने वहां लिया था। और यहाँ क्या लेना है भाव में, वर्तमान पर्याय से युक्त को लेना है, यानी जो वर्तमान ज्ञाता भी है और वर्तमान उपयोग रूप भी है, उसको आगम भावानंत कहेंगे हम। ख्याल है, यहाँ पढ़ेंगे। देखो, आगम और नो आगम की अपेक्षा भावानंत दो प्रकार का है। अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाले, ये ज्ञाता है, और आगे की कंडीशन क्या है, वर्तमान में उसके उपयोग से उपयुक्त जीव को आगम भावानंत कहते हैं। अभी ख्याल में आया, आगम द्रव्यानंत और आगम भावानंत में क्या डिफरेंस है, दोनों ही आगम अनंत है ना, आगम द्रव्यानंत हो या भावानंत है, दोनों ही अनंत विषयक शास्त्र के ज्ञाता है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आगम द्रव्यानंत है वो वर्तमान में उस उपयोग से रहित है, और आगम भावानंत है उसमें ही उसका उपयोग लगा है, अनंत विषयक शास्त्र में ही उसका उपयोग लगा है, वो आगम भावानंत है।
तो अभी ये दो भेदों में से हम कौन सा भेद में आएंगे अभी, क्योंकि भाव अनंत के ही हम जान रहे हैं ना, उसमें उपयुक्त है ना अपना।
देखो क्या कहते हैं, अनंत विषयक शास्त्र को जानने वाले और वर्तमान में उसके उपयोग से उपयुक्त जीव को, जीव की बात है, आगम भावानंत कहते हैं। त्रिकाल जात अनंत पर्यायों से परिणत जीवादि द्रव्य नो आगम भावानंत है, यानी जो आगम से रहित वो नो आगम है, तो जो आगम ज्ञान से रहित ऐसे अन्य सभी द्रव्य इसमें लगा लो, त्रिकाल सभी पर्याय से परिणत ऐसे, त्रिकाल जात अनंत पर्याय से परिणत ऐसे अन्य सभी जो द्रव्य है वो नो आगम भावानंत होंगे। फिर शंका, शंकाकार पूछता है, इतना सारा ये झमेला बता दिया, तो इन 11 प्रकार के अनंतों में से प्रकृत में किस अनंत से प्रयोजन है? क्या हमको 11 के 11 याद करना है हर बार? तो आप यहाँ कौन से अनंत की बात करने वाले हो? तो कहते हैं प्रकृत में गणना अनंत से प्रयोजन है, यानी अनंत ये जो संख्या है, गणना अनंत, गणना यानी काउंट करना उसको, संख्या, तो जो अनंत संख्या है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव कितने है तो अनंत है ऐसी बात आई थी, तो उनकी गणना की ना, मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या यहाँ बताई गई है, तो प्रकृत में गणनानंत से प्रयोजन है। शंकाकार पूछता है, यह कैसे जाना जाता है कि प्रकृत में गणनानंत से प्रयोजन है? उसका समाधान, मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, इस प्रकार शिष्य के द्वारा पूछने पर अनंत है इत्यादि रूप से प्रमाण का प्ररूपण करने से, यानी संख्या बता देने से जाना जाता है कि प्रकृत में गणनानंत से प्रयोजन है। इस गणनानंत को छोड़कर शेष अनंत, शेष कितने अनंत, 10 अनंत रिमेनिंग, बाकी जो 10 अनंत है वे प्रमाण के प्ररूपण करने वाले नहीं है, प्रमाण को बताने वाले नहीं है, प्रमाण जीवों का कितना प्रमाण है संख्या को बताने वाले नहीं है, क्योंकि शेष अनंतों में गणना रूप से कथन नहीं देखा जाता है। कहीं तो उसका अंतिम विभाग नहीं होता है, कोई तो शाश्वत है और अन्य अन्य आकाश के वो हमने देखे अलग अलग भेद, तो अलग अलग अपेक्षाओं से वहाँ अनंत कहने में आया है, परंतु उसमें अनंत संख्या की बात नहीं आई है। तो प्रमाण को बताने वाला अनंत कौन सा है? वो गणना अनंत है। फिर शंका, ये हमारी शंका यहाँ पूछ रहे हैं, यदि प्रकृत में गणनानंत से प्रयोजन है तो गणनानंत को छोड़कर शेष 10 प्रकार के अनंतों का प्ररूपण यहाँ पर किस लिए किया है? ये सारा द्रव्य अनंत का झमेला क्यों इतना सारा बताते हैं? समाधान, हाँ हाँ, श्लोक है, श्लोक है, बरोबर, ऊपर का श्लोक हम पढ़ेंगे। अवगय निवारण पयदस्य परुवणानि मित्तं च संशय विनाशन तच्छत्थवधारण च। क्या कहते हैं? देखो, अप्रकृत विषय के निवारण करने के लिए, प्रकृत यानी हमारा जो चल रहा है विषय, उसको प्रकृत विषय कहते हैं, और उस विषय को छोड़कर जो अन्य उसी के संबंध में विषय है उसको अप्रकृत विषय कहेंगे। जैसे हमारा प्रकृत विषय है गणना अनंत, और बाकी जो 10 अनंत है वो अप्रकृत विषय है। तो अप्रकृत विषय के निवारण करने के लिए, प्रकृत विषय के प्ररूपण करने के लिए, संशय का विनाश करने के लिए, क्योंकि जब हमारे मन में इस अनंत का नाम सुनेंगे तो क्या और भी कोई अनंत होते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, ऐसा संशय मन में उत्पन्न होता है, तो उसके निवारण करने के लिए, और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए, यानी अनंत कहते अभी हमें पता चला कि इतने प्रकार के 11 अनंत है, तो ये तत्वार्थ का यहाँ निश्चय हो जाता है। यहाँ पर सभी अनंतों का कथन किया है। पूर्वाचार्यों ने कहा भी है, क्या कहा है ऊपर देखते हैं, जत्थ बहु जाने जो अपरिमितं तत्थ निखिवे सूरी, जत्थ बहु अम न जानई चौथो तत्थ निखेओ। क्या कहते हैं? जहाँ जीवादि पदार्थों के विषय में बहुत जानना चाहे, किसी विषय के बारे में हमको बहुत जानना है, तब क्या कहते हैं, वहां पर आचार्य सभी का निक्षेप करें, सभी निक्षेपों को बतावें, तथा जहां पर बहुत न जाने तो वहां पर 4 निक्षेप तो अवश्य करना चाहिए। कौन से 4 निक्षेप? हाँ, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप तो कम से कम अवश्य होने चाहिए, और अधिक जानना चाहे तो अधिक निक्षेप वहां होंगे। ऊपर लिखा ना अपरिमितम, अनेक उसमें निक्षेप होते हैं, अथवा निक्षेप के बिना वर्णन किया गया यह विषय कदाचित वक्ता को उन्मार्ग में ले जावे, बताने वाला कोई उसके वो ट्रैक बदल जावे, ऐसा कहते हैं, उन्मार्ग में ले जावे, अपने चालू ट्रैक छोड़कर कहीं अन्य में घुस जावे। वो क्या कहते हैं कि निक्षेप के बिना, यानी निक्षेप बिना कोई भी, चलो वर्णन चल रहा है, चल रहा है, अरे पर कौन से निक्षेप के द्वारा क्या चल रहा है, यदि उसको पक्का मालूम है, जैसे हम अभिश्रेणिक राजा को हमारे भावी तीर्थंकर कह रहे हैं, तो कौन से निक्षेप के द्वारा उनको कह रहे हैं? तो क्या नारकी भी हमारे तीर्थंकर होते हैं? कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? तो कौन से निक्षेप के द्वारा, हाँ वो सब हमारे ख्याल में आना चाहिए वक्ता के लिए, कि निक्षेप के बिना वर्णन किया गया यह विषय कदाचित, यानी पॉसिबिलिटी है ना, वक्ता को उन्मार्ग में ले जावे, इसलिए यहाँ पर सभी अनंतों का निक्षेप किया है। निक्षेप किया ने वो बताया है, कहा भी है, क्या कहा है, 18 पृष्ठ पर ऊपर 14-15 का था ना, पहले 14 पढ़ेंगे। प्रमाण नय निक्षेपे यो अर्थो नामि समीक्षते युक्तम चायुक्तवत भाति तस्या युक्तम चयुक्तवत। ये संस्कृत है ना, अर्थ अलग, देखो क्या कहते हैं उसका अर्थ, देखो नीचे, प्रमाण नए और निक्षेपों के द्वारा। ये पहले भी हमने बहुत इसकी चर्चा की थी। क्या कहते हैं? प्रमाण से, नए से और निक्षेपों से। प्रमाण नए और निक्षेपों के द्वारा जिस पदार्थ की समीक्षा नहीं की जाती है, समीक्षा ने अच्छी तरह से उसका वर्णन, अच्छी तरह से उसको पहचानना नहीं की जाती, उसका अर्थ युक्त होते हुए भी अयुक्त सा प्रतीत होता है, यानी उसका अर्थ सही होने पर भी गलत सा प्रतीत होता है, और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त सा प्रतीत होता है। यदि प्रमाण नए और निक्षेपों के द्वारा उसकी समीक्षा न की जावे तो, यानी किसी चीज का ज्ञान करना है तो प्रमाण से, नए से और निक्षेपों से किया जाता है। समय सार में अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कुंदकुंद भगवान कहते हैं मैं आपको बताऊं, तो कैसे कैसे बताया उन्होंने? आगम से और युक्ति के अवलंबन से, ये युक्ति कहते हैं इसको। किसको युक्ति कहना? युक्ति में कुछ ट्रिक करना, वो युक्ति नहीं है। प्रमाण से, नए से और निक्षेप से जानना ही युक्ति से जानना है। क्या लेन? देखो ये सही, यही सेम श्लोक हमने पहले पुस्तक में देखा था, यही वर्ड टू वर्ड, एक एक अक्षर उसका वही है। पुस्तक एक में हमने देखा था, वो वहां उसके 10 और 11 नंबर थे और यहाँ 14-15 नंबर है। स्टार्टिंग में ही ये विषय हुआ था अपना, प्रमाण नए निक्षेप का, क्या है? और ये दोनों श्लोक वही है। मेरे ख्याल से ये पहले वाला ही श्लोक मुझे फैमिलियर लगता है, वो 13 नंबर का। ठीक है, अभी आगे वाला 15, वो निक्षेप किसको कहना? देखो निक्षेप को न्यास भी कहते हैं, अभी यहाँ लिखते हैं ऊपर देखो। ज्ञानम प्रमाणमित्याहु उपायो न्यास उच्यते, नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितर्थ परिग्रह। तो क्या कहते हैं? विद्वान पुरुष सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। नामादिक के द्वारा, नामादिक में क्या क्या लेना अभी? हाँ, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, कम से कम 4 ली ना। तो नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को, वस्तु में भेद किया जाता है उसको जाना जाता है ना अलग एंगल से, तो वस्तु में भेद किए उसको निक्षेप कहा, और ज्ञान के जो अंश है उसको हम नए कहेंगे। तो क्या कहते हैं? नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। न्यास कहो या निक्षेप कहो, एक ही बात है। और ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ज्ञाता जिस अभिप्राय से बता रहा है या कहते कर रहा है या जान रहा है उसके अभिप्राय को नए कहते हैं। इस प्रकार युक्ति से, क्या लिखा मंजू बेन? यही लिख दिया, देखो युक्ति कहा उसको। युक्ति से अर्थात क्या लिखा? प्रमाण नए और निक्षेप के द्वारा पदार्थ का ग्रहण अथवा निर्णय करना चाहिए। ग्रहण का ही अर्थ क्या है? जानना चाहिए। पदार्थों को कैसे जानना चाहिए? प्रमाण नए और निक्षेप के द्वारा। हमें आत्मा को जानना है तो युक्ति से जानना है, तो प्रमाण से, नए से और निक्षेप के द्वारा जानना है। क्या लेना? ये सभी उसका नाम, उसकी ये जो कुछ है, इस तरह से उसको जानना है। किसी चीज को जानेंगे तो उसमें ये निक्षेप के द्वारा पहले वस्तु में भेद करके उसको जानेंगे। अभी यहाँ जो गणनानंद का विषय चलेगा, हाँ, उसके बाद हम कल से देखेंगे। हाँ देखो, गणनानंद तो 3 प्रकार का है। गणनानंद यानी संख्या जो है 3 प्रकार की है। अनंत के भेद करना है हमके, अनंत जो संख्या है तो उसके 3 भेद हैं। पहले हमने बहुत पहले पढ़ा था, हाँ, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। पहले हमने संख्यात, असंख्यात के सबसे भेद देखे थे ना, असंख्यात के भी ऐसे ही भेद किए थे। अब यहाँ अनंत के भेद देखेंगे। गणना अनंत यानी संख्या जो है अनंत, उसके भेदों की जो चर्चा है वो हम कल से प्रारंभ करेंगे। जावाणी